नमस्कार मित्रों, यह स्टीव डुपुइये जो डॉक्टर बॉब थील के साथ बाइबल न्यूज भविष्यवाणी कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति दे रहे हैं। हम आपको बाइबल की भविष्यवाणी के आलोक में विश्व घटनाओं के समाचार और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर थील, क्या कोई यीशु द्वारा की गई भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाएगा?
हाँ, और ऐसा लगता है कि यह हमेशा से होता आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, मत्ती 24 के अध्याय 7 और 8 में यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि विभिन्न स्थानों में अकाल, महामारी और भूकंप आएंगे और ये दुखों की शुरुआत होंगे। और मरकुस के वृत्तांत मरकुस 13 के अध्याय 8 में हम देखते हैं कि यीशु ने विपत्तियों की भविष्यवाणी की थी। इसमें लिखा है, और विभिन्न स्थानों में भूकंप आएंगे और अकाल और विपत्तियां होंगी, ये दुखों की शुरुआत है। पिछले सप्ताह हमने भूकंप से संबंधित कई परेशानियां देखी है। मैं कुछ समाचार रिपोर्टों पर चर्चा करना चाहता हूं। ये रही एक रिपोर्ट। 24 जून की शाम को मात्र 38 सेकंड में वेनेजुएला ने वह अनुभव किया जिसे भूकंप वैज्ञानिक एक दुर्लभ भूकंप युगल कहते हैं। लगभग एक साथ आए दो भीषण भूकंप जो एक सदी से भी अधिक समय में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप थे। दरअसल यह 125 वर्षों से भी अधिक समय है और उनकी तीव्रता 7.5 और 7.2 थी। और फिर 24 घंटों के भीतर जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों ने अनुमान लगाया है कि इस आपदा में 10,000 से 1,00,000 लोगों के हताहत होने की 40% संभावना है। फिलहाल लगभग 1,000 लोग ही हताहत हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज सुबह यह भी बताया कि वेनेजुएला में 51,000 लोग लापता है। इस बीच यह एक और समाचार रिपोर्ट है। बुधवार की सुबह उत्तरी कैलिफोर्निया में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया जो 1940 के बाद इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। यह भूकंप सैन फ्रांसिस्को से लगभग 140 मील उत्तर पूर्व में स्थित विलिट्स नामक कस्बे में आया। भूकंप से वहां के 6 कस्बों में 6,000 से अधिक निवासियों की बिजली गुल हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, वेनेजुएला में आया यह भूकंप पिछले 125 वर्षों में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। उनका कहना है कि हजारों लोग घायल हुए हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था, अभी भी 51,000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं।
वेनेजुएला में आए भूकंप दुखद है, लेकिन इसका ईसाइयों का मजाक उड़ाने से क्या लेना देना है?
कुछ दिन पहले जब मैंने इस भूकंप के बारे में रिपोर्ट की और कहा कि प्रभावित लोगों के लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं, तो उसके तुरंत बाद एक धर्मभ्रष्ट ईसाई विरोधी वेबसाइट ने मेरे और मेरे लिखे हुए के बारे में कुछ टिप्पणियां पोस्ट की। तो यहां उनमें से कुछ है। वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंपों के बाद सनकी बॉब यानी कि मैं ने घोषणा की कि यह सब मरकुस 13:08 के अनुसार है और विभिन्न स्थानों में भूकंप आएंगे, ये दुखों की शुरुआत है। यह उपहास करने वाला आगे कहता है, इस बात पर ध्यान दे कि यूएसजीएस यानी संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वर्षों से विनम्रतापूर्वक समझा रहा है कि केवल भूकंप मापी यंत्रों की संख्या और आपदाओं के बारे में हमें मिलने वाली सूचनाओं की गति ही बढ़ रही है। बड़े भूकंप अभी भी औसतन प्रतिवर्ष लगभग 16 बड़े भूकंप आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक सदी से अधिक समय से आते आ रहे हैं, कुछ वर्षों में अधिक कुछ में कम। सामान्य उतार चढ़ाव, यूरोप में लू, अब तो हर कुछ वर्षों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट जाते हैं।
यह तो वाकई दिलचस्प है। यह कोई बहुत ही शानदार बात तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प जरूर है। अगर उस व्यवसाय के अनुसार हर कुछ सालों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो क्या यह भविष्यवाणी नहीं है? लेकिन भूकंप मापी यंत्रों की बढ़ती संख्या का भूकंपों की बढ़ती रिकॉर्डिंग से क्या संबंध है?
खैर, भूकंप मापी यंत्रों की बढ़ती संख्या का वेनेजुएला में आए भूकंपों से हुई तबाही से कोई लेना देना नहीं है। अगर भूकंप मापी यंत्र जैसी कोई चीज न होती तो भी उन्हें यह बात पता होती। और हां, इस हफ्ते यूरोप में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी असामान्य है। बेशक मैंने अपनी पोस्ट में यीशु और उनकी भविष्यवाणी का जिक्र किया था, यूरोप में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वेनेजुएला में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो हां, यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार वेनेजुएला में आए भूकंप और यूरोप की भीषण गर्मी ने मुसीबतें खड़ी कर दीं। इसके अलावा पिछले सप्ताह हमने कई जगहों पर भूकंप देखे जिसकी भविष्यवाणी यीशु ने मत्ती 24 और मरकुस 13 में की थी। अब दुख की बात है कि उस ईसाई विरोधी वेबसाइट का वेबमास्टर अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहता है। उसने मेरे बारे में एक और पोस्ट किया जिसे मैंने झूठा साबित कर दिया कि मेरे पास कुछ डिग्रियां, प्रमाण पत्र, पुरस्कार और ऐसी ही चीजें नहीं है, और मैंने उन सभी को ऑनलाइन डाल दिया। आप देख सकते हैं, यह सब बकवास है। दुख की बात है कि वह वेबमास्टर और अन्य ईसाई विरोधी धोखेबाज झूठ फैलाना जारी रखे हुए है। यह अंतिम दिनों की उन भविष्यवाणियों के अनुरूप है जिनके बारे में प्रेरित पौलुस ने चेतावनी दी थी। उन्होंने 2 तीमुथियुस 3:13 में कहा, दुष्ट लोग और धोखेबाज दिन ब दिन और बुरे होते जाएंगे, धोखा देते और धोखा खाते जाएंगे।
तो क्या वह वेबसाइट अपने धोखे के माध्यम से भविष्यवाणियों को भी पूरा कर रही है?
हाँ, दुख की बात है। यह भी ध्यान में रखें कि भविष्यवक्ता यशाया ने यशाया 30:10 में उन लोगों के बारे में चेतावनी दी है जो दृष्टाओं से कहते हैं, न देखो, और भविष्यवक्ताओं से कहते हैं, हमारे लिए सही बातें मत कहो, हमसे मीठी बातें करो, धोखे की भविष्यवाणी करो। फिर भी उस सच्चे ईसाइयों के विरोधी वेबसाइट पर बहुत से लोग ऐसे ही हैं। मैंने सच्चा ईसाई इसलिए कहा क्योंकि वेबसाइट का संचालक वास्तव में खुद को ईसाई होने का दावा करता है, फिर भी वह झूठे बयान देता है, चर्च के इतिहास और भविष्यवाणियों से संबंधित कई मामलों में सच्चाई का उपहास करता है। अब उस वेबसाइट पर ईसाई विरोधी टिप्पणियां और उसके द्वारा घटित हो रही इन समस्याओं जैसी बातों को नजरअंदाज करना मुझे प्रेरित पत्रस की लिखी एक बात की याद दिलाता है। मैं यहां 2 पत्रस 3:1 लंबा अंश पढ़ने जा रहा हूं। पत्रस ने लिखा, प्रियो, मैं अब तुम्हें यह दूसरा पत्र लिख रहा हूं जिसमें मैं तुम्हारे शुद्ध मन को स्मरण दिलाकर जगा रहा हूं, ताकि तुम पवित्र भविष्यवक्ताओं द्वारा पहले कहे गए वचनों और प्रभु और उद्धारकर्ता के प्रेरितों के आदेश को याद रखो और यह सर्वथा जान लो कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले आएंगे। ठीक है, इन भविष्यवाणियों का उपहास करेंगे, अपनी वासनाओं के अनुसार चलेंगे, क्योंकि वे सच्चे चर्च से घृणा करते हैं। वे बस इसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं। नास्तिक भी इसी श्रेणी में आते हैं और कहेंगे, उसके आने का वादा कहा है, क्योंकि जब से हमारे पूर्वज सो गए हैं, सृष्टि के आरंभ से ही सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था। तो दूसरे शब्दों में, वे जो कुछ भी कहेंगे वह यही होगा कि सब कुछ सामान्य है, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। पद 5, वे जानबूझकर यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन से प्राचीन काल में आकाश और पृथ्वी जल में स्थित थे, जिससे उस समय का संसार जलमग्न होकर नष्ट हो गया। परंतु अब जो आकाश और पृथ्वी उसी वचन से सुरक्षित है, वे न्याय के दिन और अधर्मियों के नाश के दिन तक आग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, और ये उपहास करने वाले अधर्मी मनुष्य हैं, उनमें से कुछ स्त्रियां भी हैं, परंतु जहां तक मुझे पता है उनमें से अधिकतर पुरुष है। 8वें पद में पत्रस सबको याद दिलाता है, परंतु हे प्रियजनों, यह एक बात न भूलो कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष 1 दिन के समान। इसे याद रखें क्योंकि यह भजन संहिता में भी लिखा है। 9वां पद, प्रभु अपने वादे को पूरा करने में रिलाई नहीं करता जैसा कि कुछ लोग करते हैं, परंतु वह हमारे प्रति धीरज रखता है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह चाहता है कि सब पश्चाताप करें। तो परमेश्वर की एक योजना है और उसका उद्देश्य उद्धार पाने वाले लोगों की संख्या को अधिकतम करना है। देखिए, लोग इस कारण परमेश्वर का उपहास करते हैं, लेकिन यही उनकी योजना है। खैर, पद 10, परंतु यहोवा का दिन रात में चोर की तरह आएगा, जिसमें आकाश बड़ी गूंज के साथ नष्ट हो जाएगा, तत्व तीव्र ऊष्मा से पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब जलकर राख हो जाएगा। 8, क्योंकि ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, तो तुम्हें पवित्र आचरण और ईश्वर भक्ति में किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन के आने की प्रतीक्षा करते हुए और उसे शीघ्र लाने का प्रयास करते हुए, जिसके कारण आकाश नष्ट हो जाएगा, फिर भी हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नए आकाश और नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जिसमें धर्म का वास होगा। 14, 8, हे प्रियजनों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए परमेश्वर द्वारा शांति में निर्दोष और बेदाग पाए जाने के लिए परिश्रम करो और ध्यान रखो कि हमारे प्रभु का धीरज ही उद्धार है। खैर, जैसा कि प्रेरित पत्रस ने भविष्यवाणी की थी, कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह सामान्य है, भविष्यवाणी नहीं। 2009 में मैंने 2012 और गुप्त संप्रदाय का उदय नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें मैंने ये बातें लिखी थीं, अजीब मौसम के पैटर्न और प्राकृतिक आपदाएं, मत्ती 24:7। दुनिया वास्तव में एक उथल पुथल भरे बदलाव के दौर से गुजर रही है, क्योंकि शांति का असली युग अभी तक नहीं आया है। यह अराजकता का दौर होगा, यह दुखों की शुरुआत है, मत्ती 24:8। और जब से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, तब से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और अन्य अजीब मौसम संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही है। यूरोप में इस सप्ताह की गर्मी की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है, क्योंकि इस साल की नवीनतम लू अपने चरम पर पहुंच रही है। फ्रांस में मंगलवार 23 जून को तापमान मापन शुरू होने के बाद से सबसे गर्म दिन रहा। राष्ट्रीय मौसम सेवा मेटियो फ्रांस ने पोसोस में 44.3 डिग्री सेल्सियस का भीषण तापमान दर्ज किया। वैसे यह तापमान 111.74 डिग्री फारेनहाइट है। अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया था। यूरोन्यूज के अनुसार पश्चिमी यूरोप में भीषण गर्मी से अफरातफरी मची हुई है, और यह गर्मी जानलेवा साबित हुई है, क्योंकि स्पेन में गर्मी से संबंधित 327 मौतें दर्ज की गई है। यूरोन्यूज के एक अन्य लेख में कहा गया है कि यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, और यह गर्मी अगले 2 हफ्तों तक पूरे महाद्वीप में जारी रहने की आशंका है। स्पेन में जून के महीने में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है, जिससे कई राष्ट्रीय और स्थानीय रिकॉर्ड टूट गए हैं, और वास्तव में उन्हें मई से ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी और मौसम संबंधी ये समस्याएं एक चेतावनी के रूप में काम करनी चाहिए।
भविष्यवाणी के संबंध में उस वेबसाइट और अन्य वेबसाइटों को किन धर्मग्रंथों पर विचार करना चाहिए?
क्योंकि बाइबल कहती है कि मौसम पर परमेश्वर का नियंत्रण है, और आमोस अध्याय 3:6 से शुरू होकर यह कहता है, यदि किसी नगर में विपत्ति आती है तो क्या यह यहोवा की ही इच्छा नहीं होगी? निश्चय ही प्रभु परमेश्वर कुछ भी नहीं करता जब तक कि वह अपने रहस्य को अपने सेवकों भविष्यवक्ताओं पर प्रकट न कर दे।
क्या ईश्वर के पास आपके श्रोताओं और उस सच्चे ईसाइयों के विरोधी व्यवसाय के पाठकों के लिए मौसम के संबंध में कोई भविष्यवाणी है?
हाँ, बाइबल में स्पष्ट रूप से मौसम से संबंधित आशीषों की बात की गई है, जो आज्ञा पालन के लिए है, और मौसम से संबंधित श्रापों की बात की गई है, जो अवज्ञा के लिए है। मौसम उतना अनिश्चित नहीं है जितना लोग मानते हैं। बाइबल वास्तव में चेतावनी देती है कि परमेश्वर लोगों को पश्चाताप का संदेश देने के लिए मौसम का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए आमोस अध्याय 4:7 से शुरू होकर परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझसे वर्षा रोक ली, मैंने एक नगर में वर्षा कराई, दूसरे नगर में वर्षा रोक ली, एक भाग में वर्षा हुई और जहां वर्षा नहीं हुई वह भाग सूख गया, इसलिए 2 या 3 नगरों के लोग पानी पीने के लिए दूसरे नगर में भटक गए, परंतु वे तृप्त नहीं हुए, फिर भी तू मेरे पास नहीं लौटा, यहोवा कहता है। 9वें पद में लिखा है, मैंने तुझे रोग और फफूंद से नष्ट कर दिया, जब तेरे बाग, तेरे अंगूर के बाग, तेरे अंजीर के वृक्ष और तेरे जैतून के वृक्ष बढ़े तो टिड्डियों ने उन्हें खा डाला, फिर भी तू मेरे पास नहीं लौटा, यहोवा कहता है।
डॉक्टर थील, आप अपने श्रोताओं के लिए समापन में क्या कहना चाहेंगे?
निंदा करने वाले लोग मौसम के बारे में परमेश्वर की भविष्यवाणियों को अनदेखा करते हैं। वे पश्चाताप नहीं करना चाहते, वे बस सब कुछ नकार देना चाहते हैं, और प्रेरित पत्रस ने इसके बारे में चेतावनी दी थी। आशा है कि आप उस ईसाई विरोधी वेबसाइट जैसे लोगों की उपेक्षा से प्रभावित नहीं हुए होंगे जो यीशु के वचनों और बाइबल की भविष्यवाणियों को अनदेखा करते हैं। दुख की बात है कि आजकल अधिकांश लोग मौसम के बदलावों को अनदेखा करते हैं और बस यह मानते हैं कि मौसम हमेशा बदलता रहता है और इसका परमेश्वर भविष्यवाणी या उनकी अवज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बाइबल दिखाती है कि अजीब, गंभीर और विचित्र मौसम के पैटर्न परमेश्वर की चेतावनी का हिस्सा है। आशा है कि सभी लोग इन संदेशों पर ध्यान देंगे या अधिक लोग ध्यान देंगे।
धन्यवाद डॉक्टर चील। डॉक्टर चील के साथ और भी साक्षात्कारों के साथ साथ लिखित और ऑडियो लेखों के लिए हमारी वेबसाइट bnpi.net पर जाएं। यह स्टीव डुपुई की ओर से बाइबल न्यूज़ भविष्यवाणी कार्यक्रम है।